नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से C-295 सैन्य विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। सरकार चावल मिल मालिकों से सभी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए आज से शुरू हो रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री न केवल भारत स्पेन के संबंधों को सशक्त बनाएगी बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बल देगी। रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व के लिए यानी त्रिविमानों का विनिर्माण करेगा और भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र की इसमें एक बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र की अभूतपूर्व विकास का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि देश में जीवंत रक्षा उद्योग निर्मित करने के प्रति उनकी सरकार कई कदम उठा रही है और रक्षा विनिर्माण के निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में लगभग 1,000 रक्षा स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के रक्षा निर्यातों में 30 गुना वृद्धि हुई है। भारत अब विश्व के 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ोदरा की नई सुविधा देश के युवाओं को कौशल और प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनके लिए रोजगार के हजारों अवसर सृजित करेगी। खाद्य पदार्थ, फिल्म और फुटबॉल के जरिए भारत और स्पेन के बीच लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय वैमानिकी उद्योग की प्रगति में योगदान देगी। यह साझेदारी यूरोप की अन्य कंपनियों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध कराएगी। टाटा के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तथा निजी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जैसी अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयां इस कार्यक्रम में योगदान देंगे। कुल 56 विमानों में से C-295 सैन्य विमान इन परियोजनाओं के तहत भारत के लिए निर्मित होंगे। इनमें से 40 का विनिर्माण बड़ोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा जबकि 16 विमानों की सुपुर्दगी स्पेन आधारित वैमानिकी कंपनी एयरबस करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला पूरे देश के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। यह मेला राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए रोजगार के अवसरों के साथ युवाओं को सशक्त बनाएगा। नवनियुक्त युवाओं को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए बुनियादी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। इस पोर्टल पर 1400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ये पाठ्यक्रम युवाओं को अपना कार्य प्रभावशाली तरीके से करने के आवश्यक कौशल सिखाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार चावल मिल मालिकों से सभी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम शिकायत निवारण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। श्री जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से लेकर समाधान खोजने तक का पूरा निवारण ऑनलाइन होगा। श्री जोशी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिल मालिकों को सभी शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। पोर्टल की विशेषताओं के बारे में श्री जोशी ने कहा कि यह उनकी शिकायतें इस पर दर्ज कर सकेंगे, संबंधित अधिकारी से समयबद्ध और स्वचालित रूप से समाधान प्राप्त कर सकेंगे। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्य निष्ठा की संस्कृति। यह सप्ताह शासन और जन प्रशासन में पारदर्शिता और नीति की आवश्यकता को लेकर व्यापक संवेदनशीलता सृजित करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सप्ताह के स्मरण में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त एएस राजीव ने नई दिल्ली के सीबीसी मुख्यालय में अधिकारियों को शपथ दिलाई। आयोग ने नीतियों और सत्य निष्ठा के महत्व के संबंध में व्यापक जागरूकता सृजित करने और सभी हितधारकों को इसमें शामिल करके सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा को बढ़ावा देने के प्रति सतर्कता जागरूकता सप्ताह की प्रतिबद्धता की पुष्टि का उल्लेख किया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के आकाशवाणी भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अधिकारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता फैलाने के राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रोशनी से रोशन किया गया है। हर साल अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। अभियान का उद्देश्य इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रोगी के बारे में नकारात्मकता को कम करना और भेदभाव को समाप्त करना है। समावेशन के संदेश को बढ़ाने के लिए विजय चौक से इंडिया गेट तक वॉक फॉर डिसलेक्सिया का भी आयोजन किया गया। यह पदयात्रा एक्ट फॉर डिसलेक्सिया के लिए सामूहिक कार्रवाई का प्रतीक है, जो सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसरों और समर्थन की आवश्यकता पर बल देती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के अल्पकालिक संघर्ष विराम प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। काहिरा में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेबोने के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति सीसी ने इस प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में कई फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इसराइल के चार बंधकों को छोड़ने में सुविधा पहुंचाने के लिए दो दिन के संघर्ष विराम का सुझाव दिया गया है। इसके बाद अस्थायी संघर्ष विराम स्थापित करने के लिए 10 दिनों तक वार्ता होगी। इस पहल के लिए इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था और कई मंत्रियों से समर्थन मिलने के बावजूद नेतन्याहू इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वार्ता हमला जारी रहने के दौरान ही होगी। संघर्ष विराम लागू करने की पहल का नेतृत्व अमेरिका, मिस्र और कतर ने किया, लेकिन नेतन्याहू का संघर्ष विराम समझौते को मानने से इनकार करने के कारण कैदियों की अदला बदली रुक गई। पिछले साल अक्टूबर महीने में हमास द्वारा सीमा पार घुसपैठ के बाद संघर्ष की शुरुआत करने के समय इजरायली सेना गजा से लगातार हमले कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा तत्काल संघर्ष विराम लागू करने के आह्वान के बावजूद इजरायली सेना के हमले जारी हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने आज कहा कि वे कार्यालय में रहेंगे और राजनीतिक बाधा उत्पन्न नहीं हो देंगे। श्री इशिबा ने आकस्मिक चुनाव के एक दिन बाद संवाददाताओं को बताया कि वे जापान की रक्षा करते हुए लोगों के हितों की रक्षा करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने अपना सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए संदेह, अविश्वास और फंडिंग घोटाले पर आक्रोश को भयानक चुनाव परिणाम मिलने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे कोष और राजनीति के मुद्दे से संबंधित बुनियादी सुधार पर कार्य करेंगे। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री इशिबा ने अन्य पार्टियों से सहयोग लेने की घोषणा की है। अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए इन पार्टियों के साथ उनका प्रशासन नीति बनाने की प्रक्रिया को साझा करेगा। 465 सीटों के पार्लियामेंट में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और उसके सहयोगी कोमिटो को कुल 215 सीटें मिली, जबकि बहुमत के लिए 233 सीटों की आवश्यकता है। एलडीपी ने अकेले 191 सीटें जीती है, जबकि चुनाव से पहले इसके पास 247 सीटें थी। इसके विपरीत मुख्य विपक्षी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले की 98 सीटों के महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए 148 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आज आतंकवादियों के एक समूह ने नियंत्रण रेखा के पास से गुजर रहे सेना के काफिले में शामिल एक एम्बुलेंस पर गोलीबारी की। हमारे आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि एम्बुलेंस में सवार सेना के जवान सुरक्षित हैं। आतंकवादी सैनिकों की कड़ी जवाबी कार्रवाई से पास के जंगल में भागने में सफल रहे। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयरन मैन चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कर्नाटक के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या की सराहना की और इसे एक सराहनीय उपलब्धि बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा जताई कि श्री सूर्या की उपलब्धि कई युवाओं को फिटनेस से संबंधित गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।